हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा और करिश्मा जी दोनों जद्दोजहद कर रही थीं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जो उन्हें उस गुप्त स्थान तक ले जा सके जहाँ अमन के पिताजी कैद थे। करिश्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ केवल खंडहर जैसी दीवारें थीं और चारों तरफ धूल मिट्टी थी। हाल बहुत बुरा था, लेकिन वहाँ एक चीज बिल्कुल साफ सुथरी थी, शिवजी की मूर्ति। तभी तारा ने करिश्मा जी से कहा, मुझे लगता है माँ, हमें मेहनत करके नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। हो सकता है पिताजी तक जाने का रास्ता हमारी आसपास ही हो, लेकिन मेहनत के चक्कर में हम उस रास्ते तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। करिश्मा जी को तारा का विचार अच्छा लगा और वे दोनों जगह बैठकर ध्यान से सोचने लगीं। चारों ओर अच्छी तरह देखने के बाद तारा ने करिश्मा जी से कहा, माँ, आपने एक बात नोटिस की? चारों तरफ धूल मिट्टी लगी है, लेकिन शिवजी की मूर्ति पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि शिवजी की मूर्ति के आसपास ही कोई रास्ता मिल सकता है। करिश्मा जी उसकी बात से सहमत हो गईं। करिश्मा जी को लगने लगा था कि परियों में ज्यादा बुद्धि होती है, इसलिए वो तारा के पीछे पीछे थीं। तारा ने शिवजी की मूर्ति के पास जाकर देखा। उसकी निगाहें शिव मूर्ति के सामने थोड़ी दूरी पर एक नंदी पर पड़ी। नंदी मूर्ति के रूप में वहां बैठा हुआ था। उसे देखकर तारा के मन में कई ख्याल आए। उसने नंदी को ध्यान से देखा। उसका मुंह खुला हुआ था। नंदी का मुंह खुला देखकर तारा हैरान हो गई। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नंदी का मुंह इस तरह खुला नहीं रहता। तारा को समझ आ गया कि नंदी के खुले मुंह का कोई राज जरूर है। उसने करिश्मा जी को इशारा किया, माँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ऐसा कहकर उसने नंदी के मुंह को दोनों हाथों से जोर से दबाया। अचानक शिव मंदिर के सामने का पाट खुलने लगा। वो जैसे ही खुला, तारा की आंखों में चमक आ गई। करिश्मा जी भी ये देखकर बहुत खुश हुईं, क्योंकि उनके पति बहुत दिनों बाद मिलने वाले थे। वे दोनों अंदर जाने लगीं। शिव मंदिर के सामने वाले पाट में सीढ़ियाँ दिखाई देने लगीं। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे गईं, उन्होंने देखा कि गुफा में पूरा अंधेरा था। चारों तरफ इतना घोर अंधेरा देखकर एक पल के लिए करिश्मा जी और तारा दोनों हैरान और परेशान हो गईं। वे सोचने लगीं कि इस अंधेरे को कैसे दूर करें, क्योंकि इस अंधेरे में वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तभी तारा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों तरफ रोशनी फैला दी। करिश्मा जी अपनी परी बहू को तारीफ भरी निगाहों से देख रही थीं। वे बहुत खुश थीं, क्योंकि तारा की शक्तियाँ बहुत अच्छी थीं। कुछ देर तक तारा को देखने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा में जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। वो ऊबड़ खाबड़ सी जगह थी। धीरे धीरे वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगीं। तारा की रोशनी उनके साथ चल रही थी, इसलिए उन्हें कहीं भी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा लाल रंग का दरवाज़ा दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें हैरानी हुई। लाल रंग का दरवाज़ा उनकी पहली सीढ़ी थी, लेकिन उन्हें सात दरवाजे पार करने थे। इतनी आसानी से लाल रंग के दरवाजे तक पहुंचना तारा को हैरान कर गया था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तारा ने यह बात करिश्मा जी से कह दी। करिश्मा जी परेशान हो गई, शायद तुम ठीक कह रही हो। काली शक्तियों का गुरु हमें इतनी आसानी से लाल दरवाजे तक कैसे पहुंचने दे सकता था? जरूर कुछ गड़बड़ है। वे दोनों सोच ही रही थीं कि उन्हें अपने पीछे सी 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि भयंकर काले नाग सर्प महाराज की थी। सर्प महाराज वहां उपस्थित हो चुके थे, क्योंकि काली शक्तियों के गुरु ने उन्हें वहां भेजा था। वहां किसी तरह की और कोई रुकावट नहीं थी। सर्प महाराज सबसे बड़ी रुकावट थे। काली शक्तियों के गुरु को सर्प महाराज की शक्तियों का अंदाज़ा था और वो जानते थे कि वो कितना खतरनाक है। वो आसानी से तारा और करिश्मा जी को हरा सकता था, इसलिए उन्होंने सर्प महाराज को पहले दरवाजे पर भेज दिया था। जैसे ही तारा ने सर्प महाराज को देखा और सर्प महाराज ने तारा को देखा, तो उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। सर्प महाराज कश्मकश में पड़ चुका था। एक तरफ उसके श्राप से मुक्त होने का समय आ गया था, लेकिन दूसरी ओर उसके सामने तपस्वी महाराज की बेटी खड़ी थी। सर्प महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सर्प महाराज ने तारा से कहा, तारा परी, अगर तुम यहाँ हो तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ मारना होगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार काली शक्तियों के गुरु के कब्जे में है, और जब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं हटाता तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तारा परी सर्प महाराज की बातों का मतलब समझ चुकी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने इस दरवाजे को पार नहीं किया तो वो अमन के पिताजी को नहीं ढूंढ पाएंगी। ऊपर से एक और मुसीबत थी, विक्रांत रंधावा, जिसे तारा ने कैद किया हुआ था। तारा जानती थी कि ज्यादा देर तक उसका जादू विक्रांत रंधावा को नहीं बांध पाएगा। अब सर्प महाराज से लड़ने के अलावा तारा और करिश्मा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। सर्प महाराज तारा पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे श्राप से मुक्त होना था, इसलिए मजबूरन उसे तारा को मारना ही था। इसलिए जल्दी ही करिश्मा जी जिन्न रूप में आ गईं और तारा परी अपने परी रूप में आ गई। दोनों मिलकर सर्प महाराज का सामना करने लगीं, लेकिन सर्प महाराज उन दोनों सास बहू पर भारी पड़ रहा था। सर्प महाराज का विशाल शरीर था और उसमें ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थीं जिनका मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्हें कुछ तो करना था। वे इस तरह से सर्प महाराज से हार कर पीछे नहीं हट सकती थीं। वे जानती थीं कि अगर सर्प महाराज को नहीं हराया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए तारा ने करिश्मा जी को इशारा किया। करिश्मा जी ने तारा का इशारा समझ लिया। जैसे ही करिश्मा जी ने सर्प महाराज पर अपनी आग के शोले बरसाकर हमला करना शुरू किया, ठीक उसी वक्त तारा ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके सर्प महाराज को एक बड़े पिंजरे में कैद कर लिया। तारा जानती थी कि सर्प महाराज को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, लेकिन उसे कैद जरूर किया जा सकता था, इसलिए उसने समझदारी से मौका मिलते ही सर्प महाराज को कैद कर लिया। उसके कैद होने के बाद उसने कहा, माफ़ी चाहती हूँ सर्प महाराज, हम आपकी जान नहीं ले सकते, इसलिए मजबूरन आपको बंदी बनाना पड़ा है। ये जादुई पिंजरा ऐसा है जिससे आप अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और आप एक आम सांप की तरह कैद रहेंगे। हमारा मकसद पूरा होते ही आपको आज़ाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तारा करिश्मा जी को लेकर उस लाल दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि उस लाल दरवाजे पर एक बड़ा सा राक्षस का मुंह बना हुआ था, जो दिखने में भयानक लग रहा था। तारा को लगा कि इस राक्षस के मुंह के अंदर से ही दरवाजे को खोलने का राज छुपा है, इसलिए तारा ने राक्षस के मुंह में अपना हाथ घुमाया। अचानक उस दरवाजे पर रंग बिरंगे लाइट जगमगाने लगीं और वो दरवाजा खुलने लगा। सर्प महाराज पिंजरे से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस काम में हार गया तो काली शक्तियों का गुरु उसे किसी भी कीमत पर आज़ाद नहीं करने वाला था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी, तारा और करिश्मा जी जीत चुकी थी। तारा ने करिश्मा जी को इशारा करके सर्प महाराज का ध्यान भटकाने को कहा। करिश्मा जी ने सर्प महाराज का ध्यान भटका दिया और तारा ने इस बात का फायदा उठाकर अपनी जादुई शक्ति से सर्प महाराज को उसी पिंजरे में कैद कर दिया जिसमें उसने विक्रांत रंधावा को कैद किया था। जैसे ही लाल रंग का दरवाजा खुला, उन्हें चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। उस भयानक आग को देखकर तारा और करिश्मा जी दोनों हैरान हो गईं। उन्हें आग के बीच में से कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक तारा को एक ख्याल आया। उसने जैसे ही आग में अपना हाथ डाला तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि यह आग असली आग नहीं बल्कि एक छलावा था।